संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन बिचरे हमारे ध्यान।
बारहवीं गाथा की चर्चा चल रही है, जिसकी टीका में एक पुरानी गाथा उद्धृत की है कि जई जैन मयम पवज जई, यदि जैन दर्शन का परिवर्तन करना चाहते हो तम मां निश्चय व्यवहार मुनि, तो निश्चय और व्यवहार में से एक को भी मत छोड़ो। एक के माना माने व्यवहार के छोड़ देने से तीर्थ का लोप हो जाएगा और निश्चय के छोड़ देने से तत्व का लोप हो जाएगा। अपनी व्याख्या चल रही थी कि तीर्थ का लोप का क्या अर्थ है। अपने तो सबने शिखर गिन्ना आदि तीर्थ है, अपन से बोलते तीर्थंकर, तीर्थों को जो करें वो तीर्थंकर। तो ये संदेश शिखर गिन्नार के हमारे तीर्थंकरों ने किए। एक तो सिर्फ इसलिए तीर्थ बन गए कि यहाँ खड़े रहकर उनने अपनी आत्म साधना की और उस परम तत्व को, मोक्ष तत्व को प्राप्त किया, आनंद सुख की प्राप्ति की। लेकिन जैसा कि मैंने कल कहा था, अनेक शास्त्रों के आधार पर मैंने एक संदेश शिखर नाम की किताब लिखी, 32 पेज की है, और उसमें संदेश शिखर की महिमा बताई है और उसमें तीर्थ शब्द का अर्थ बताया, कहां कहां क्या क्या लिखा है, सब बहुत कोटेशन दे करके। तो उसमें आत्मा को भी तीर्थ लिखा है, जिनवाणी को भी तीर्थ लिखा है, जीवंत तीर्थ ये लिखा है। यहाँ क्या है उसका अर्थ है कि यदि तुम जिन धर्म को प्रवर्तना चाहते हो तो व्यवहार नए को मत छोड़ो, नहीं तर तीर्थ का लोप हो जाएगा। ये भाषा है। और यहाँ इस तीर्थ शब्द का क्या अर्थ लेना, इसकी चर्चा अपनी चल रही थी। तो समन्वय दर्शन की प्राप्ति में 5 लब्धियां होती हैं, ये तो आप जानते हैं, नाम सुने होंगे, 6 लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और करण लब्धि। 6 लब्धि और विशुद्धि लब्धि तो आत्मा की योग्यता से संबंधित चीजें हैं कि यदि 6 लब्धि नहीं होगी तो जिनवाणी की बात समझ में नहीं आएगी। ध्यान से सुनना जरा, यदि विशुद्धि लब्धि नहीं होगी तो लोग जिनवाणी की बात समझ में नहीं आएंगे। पर मैं और मैं का फर्क है, मेरा स्पष्ट करता हूं उसका अर्थ है कि यहां आ गए और ज्ञान का सेवसम इतना है ही नहीं कि जो बात कह रहे वो कुछ समझ में ही नहीं आ रही है, तो समझने में सेवसम की कमी है ज्ञान की। अब सेवसम तो इतना है कि सारी दुनिया की सब चीजें याद रहती हैं और सबको समझ सकते हैं, इतनी इतनी रिसर्च कर ली है क्या। लेकिन यदि कसायों की मंदता ना हो तो वो यहां समझ में आएगा ही नहीं। और कसायों की मंदता का क्या अर्थ है, मैं ज्यादा इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ा नमूना के तौर पर बताऊंगा। साहब हमें तो बुलाया ही नहीं, कैसे जाएं? ये तो भगवान के समोसरण में भी होते ना, तो उन्हें बुलाना पड़ता तब भी सुनने के लिए आते क्या? तो एक क्या है, यानी किसी कसाय ने उस वाणी को सुनने से रोक दिया ना अपने को। तो और सरल करता हूं, तो वो सब चीजों का नाम तीव्र कसाय है जो जो हमें इस जनमानु के सुनने से रोकती है। कौन सी? कभी तो धंधा पानी चल रहा, सीजन का मौका है, शादी विवाह में जाना, आप समझिए ना, दुनिया के सारे काम से सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम जब तक ये नहीं लगे तब तक समझ लेना कि हम किसी न किसी विषय के सहारे में उलझे। तो ये विशुद्धि लब्धि। अब यहाँ पर आप यहाँ पधार गए तो विशुद्धि लब्धि तो है, मानना पड़ेगा हमें मोटा मोटा। ध्यान में है ना। और हम जो बात कह रहे हैं वो आपकी समझ में आ रही है तो सेवसम लब्धि भी है। अब आती है देशना लब्धि। तो भगवान महावीर से लेके आज तक जो उनकी दिव्य ध्वनि में माल आया है, वस्तु का स्वरूप उन्होंने जो बताया है, वो भाग्य से हमारे पास आज उपलब्ध है ना। लिखा ना आचार्य परंपरा से, लिखा ना उसमें समझ है, हमारे गुरु पर्यंत ऐसा लिखा है। ये जो तत्व ज्ञान हमारे पास आया है वो आचार्य परंपरा से भगवान महावीर की वाणी का सार है, महावीर की वाणी है। तो अब ये कहते हैं कि यदि हम व्यवहार में को छोड़ देंगे तो ये परंपरा नष्ट हो जाएगी। यदि कुंड कुंड भी निश्चय में ही मंगन रहते, घबराना नहीं, तो ये समय सार नहीं लिखते। समय सार जब उनने लिखा था तो व्यवहार में थे, क्यों? और उन्हें समय सार के लिखने का भाव पैदा हुआ था। पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिखने के बाद अपना परिचय दिया, उसमें बहुत मार्मिक तरीके से इस बात को प्रस्तुत किया कि इस किताब जो मैं लिख रहा हूं इसमें मेरा क्या है, किसका क्या है। उन्होंने लिखा खुद का परिचय देते हुए कि मैं आत्म अरपुदल खंड मिलके भयो परस पर बंद। मैं तो एक आत्मा था, वो एक पुद्गल का स्कंध है, परमाणुओं का ढेर सारे, और इनका एक क्षेत्रावकाश संबंध हो गया, क्या नहीं है ना। तो माते गर्भ में सुपर्याय, वो पर्याय थी ना आसमान जाती, उपजो मानुष नाम कहाय। और मैं उत्पन्न हुआ तो लोगों ने मुझे मनुष्य कहा, नाम मेरा मनुष्य रख दिया। मैं मनुष्य नहीं था, मैं तो आत्मा था। अपने एक कहावत है कि भैया तुमने अपने माँ बाप का नाम मत धराना, बोलते क्या नहीं बोलते, नाम धराना का मतलब समझते ना, बदनाम ही करना है। और एक भजन आता है, परे घर भ्रमत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए हम तो, कबहुं न निज घर आए। क्या मतलब है, पर घर दूसरे के घर जाएंगे तो वो नाम धरे बिना रहेगा नहीं, नाम धरेगा बिना रहेगा नहीं माने एक नया नाम रख देगा। डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कहेगा एक मरीज आया, वकील पूछेगा मुंशी से कौन आया तो कहेंगे एक क्लाइंट आया है। तो हमारे असली नाम से बोलते ही नहीं है, क्यों? पंडित से पूछेंगे कौन है, कहेगा एक श्रोता आया है। दुकान पर जाएंगे तो वो कहे ग्राहक आया है। जिसके दरवाजे पे जाएंगे वो तुम्हारे नाम को इज्जत नहीं देगा, वो अपनी तरफ से एक नया नाम रख लेगा, इसका नाम अनंत नाम धराए। तो फिर मेरा नाम मनुष्य रख दिया, और फिर कुछ लोग इकट्ठे हुए घर में, है तो उन लोगों ने मिल मिला करके मेरा नाम एक नया नाम और रख दिया, उसका नाम था टोडरमल। टोडरमल कहें सब कोई, क्या अब कहते हैं इसमें मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरी कोई गलती ही नहीं है, क्यों? ये टोडरमल मैं टोडरमल हूं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो उन लोगों ने जब मैं तो रो रहा था तब मेरा नाम मिल मिला करके नाम मिल लिखो तब हर सित हो, और टोडरमल कहें सब को। अब कहते हैं कि एक ग्रंथ लिखा तो ये कैसे हुआ? तो वो लिखते हैं ज्ञान राग तो मेरो मिलो, और लिखने पढ़नो तनु को भिलो, कागज मसी अक्षर आकार लिखिया अर्थ प्रकाशन हार। एक बहुत साजे का काम है। मेरा तो इसमें ज्ञान लगा और राग लगा, मैंने मुझको एक ग्रंथ लिखने का विकल्प आया, ये बात सच्ची है।
और मेरा ज्ञान का उपयोग भी इसमें लगा। दो चीजें लगी हैं मेरी, ज्ञान राग तो मेरो लगो और करनो धरनो, ऐसी कलम उठाई ऐसी लिखी, ये तनु को भिलो, ये शरीर का काम है। और कागज मसी, कागज पर मसी माने स्याही नहीं, अक्षरों के आकार में फैलती गई और उस स्याही ने एक शास्त्र लिख दिया। क्यों ये स्याही को क्यों लिख दिया? क्योंकि ये अक्षरों रूप स्याही पढ़ने में तो ही है, उपादान स्याही है, है? जो पढ़ने में तो है ना, वो करता है ना, मिट्टी घड़े रूप पढ़ने में तो ही तो मिट्टी का घड़े मिट्टी का करता है, ये उन्होंने लिखा। फिर उन्होंने लिखा कि यदि ऐसी बात है तो फिर इसमें बात जो लिखी वो प्रमाणिक कैसे, उसको कैसे हम सच्ची माने? तो उन्होंने बताया कि भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि से लेकर के जो आज तक की परंपरा चली आई, ये उसके अनुसार मेरे को लिखने का विकल्प आया और मुझे उपयोग में वो बात थी, इसलिए इसमें ये प्रमाणिकता का आधार है। यदि कुंदकुंदाचार्य देव को ये विकल्प नहीं आया होता और उन्हें समय साथ नहीं लिखा होता तो आज हमारा क्या होता आप कल्पना कर सकते हैं। जैन धर्म ही गायब हो गया होता, असली जैन धर्म तो समय साल में है। क्यों? तो ये व्यवहार हुआ ना, ये समय सार के कर्ता कुंद को नाचार्य से व्यवहार से है कि निश्चय से, बोलो व्यवहार से है ना। तो तुम व्यवहार को छोड़ दोगे तो समझ लेना कि तीर्थ माने जो हमारी उपदेश की परंपरा है वो नष्ट हो जाएगी, तीर्थ नष्ट हो जाएगा, तीर्थों का नाश हो जाएगा। तो हमारी तो ऐसी हालत है कि ना हम निश्चय तीर्थ संभाल पा रहे हैं ना व्यवहार तीर्थ संभाल पा रहे हैं, समय से करिए हमारे हाथ में जा रहा है। अर्जुनवाणी माता का जो ये जो असली तीर्थ है ये भी जा रहा है हाथ में। तो मैंने कल एक जगह बात छोड़ी थी जो आपने कहा था यहीं से शुरू करना। देखो कितना कठिन काम है क्या इस दिनवाणी की परंपरा को कायम रखना, क्या कुंडकुंड भगवान महावीर से कुंडकुंड स्वामी तक मौखिक परंपरा चली और उसके बाद उन्होंने ये लिखना शुरू किया। अभी वो ताड़ पत्र पर लिखे और क्या क्या हुआ और उसकी कहानी तो आप सब जानते हैं, मैं उसको ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन आज तक ये चीज चली आई और दक्षिण भारत में अभी बहुत सी किताबें ऐसी हैं अथवा शिलालेख ऐसे हैं कि जिसकी भाषा को कोई जानता नहीं, पढ़ नहीं सकता, उसका अर्थ नहीं समझ सकता है। तो मैं पूछता हूं कि वेद शिलालेख में जो बात लिखी है वो सुरक्षित है कि नष्ट हो गई? मतलब वो यदि ऐसी वो पत्थर सुरक्षित भी हो और यदि कोई पढ़ के अर्थ नहीं कर पावे तो नष्ट ही जैसी है ना। तो इस जिनवाणी माता की भी हमें सुरक्षा दो तरह से करनी है कि एक तो वो लिखित रूप से रहना चाहिए, उसका उपाय तो क्या है कि हम परमांगम मंदिर बनाए, सिंगमरमर के पार्टियों पर ऐसी लिखा लिखा करके क्यों लगवा दें, फिर ताम्र पत्रों पर लिखाएं, फिर जमीन में गाड़ दें। क्यों इसकी सुरक्षा की क्यों जरूरत है? किताब है तो बेचारे कागज है, ये कभी भी सड़ जाएंगे, जल जाएंगे, बरसात होगी तो गीले हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कोई भी इन्हें जला देगा, कुछ भी कर देगा। तो संगमरमर के पादियों पर जो होगी वो बच जाएगी, बस ये उसका और ज्यादा कोई महत्व नहीं है। और जमीन में गाड़ देने का क्या मतलब है? ताम्र पत्र पर लिख करके तो ये जो उपद्रव होंगे प्रकृति के अधीन जनता के, तो वो उस जमीन के अंदर बची रहेगी तो कभी न कभी जनवाणी आ जाएगी। अब आज के जमाने में हमारे पास ये साधन हो गए हैं छपाने के, लिखने के, इंटरनेट के, ये करके, तो इन शास्त्रों को हम छपा छपा कर सारी दुनिया में भेज गई कि कौन पढ़ता है, कि पढ़े ना पढ़े लेकिन तो भी भेज गए, अमेरिका में, इंग्लैंड में, अफ्रीका में, जब कि इसका क्या फायदा है, पढ़े नहीं तो भी, हाँ हाँ तो भी, कि मान लो पाकिस्तान का दिमाग खराब हो गया
और उसने हम पर अनुपम पकड़ दिए और हमारा देश बर्बाद हो गया, ख्याल में आई ना, तो हम सब खत्म हो जाए, संवेद शिखर भी खत्म हो जाए, गिरनार भी खत्म हो जाए, तो भी ये तीरथ बचना चाहिए, तो पाकिस्तान में भी भेज दो क्या वहां तो बची रहेगी, विश्व के हर कोने में इसे भेज दो, जिससे कहीं भी कोई हिस्सा विश्व का बचे तो हमारी जिनवाणी माता बचनी चाहिए, क्योंकि मूल तत्व ज्ञान उसका है। अब ये सब काम सेठियों का है, जबरदानी मेरी बात में क्या कहना चाहता हूं, बहुत मार्मिक बात कहता हूं। अभी सिंगमरमर की पार्टियों पर लिख के परमागमंदिर बना बना के गांव गांव में लगा देंगे जी, इनके क्या लगना है, बस थोड़ी सी जेब ढीली करनी है, हैं? फटाफट बस दे देंगे ऑर्डर और वो फटाफट सिंगमरमर की पार्टियों पर लग के बड़े बड़े हॉल बन करके उनमें चिपक जाएंगे और ताम्र पत्र में लग कर जमीन में भी गड़ जाएंगे, उसे हमारा क्या काम, क्या वहां भी काम आएंगे हम देवेंद्र, प्रूफ रीडिंग तो हम ही करेंगे यदि तुम्हें जैन धर्म का प्रवर्ताना है तो हमारी शरण में जाए बिना कोई दूसरा रास्ता तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन जो मैं ये बात आपसे कहने जा रहा हूं अभी हुई नहीं, वो असली बात आपके कि यदि एक अंदर में समय सार की गाथाएं मिल गई, अमृतंद की टीका मिल गई और लेकिन उसे निकल आई और पढ़ने वाले नहीं हुए तो क्या हुआ, तो इसके लिए निरंतर उसको पढ़ने वाले तैयार करना, उनके दिमाग में उत्तीर्ण कराना, इसके बिना जनवाणी की सुरक्षा तुम नहीं रहेगी। ये जमीन में गाड़ने से, प्रमाण पत्र में लिखाने से, प्रमाण पत्र पार्टियों से काम नहीं चलेगा, मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा हूं, उसकी उपयोगिता भी मैंने आपको बताई है, समझेंगे ना, लेकिन यदि उन्हें पढ़ने वाले नहीं रहे तो समझ लेना ये तत्व ज्ञान चला जाएगा। तो पढ़ने वाले के लिए एक एक आदमी के दिमाग में खोजना पड़ेगा, ये ताड़ पत्र तो कहीं भी मिल जाएंगे, कागज तो बाजार में बहुत मिलते हैं, संगमरमर के पैकिंगों की भी कमी नहीं है, ये जो कच्चा माल जिनके दिमाग में हमें बात लिख दें ये कितना दुर्लभ है। गुजरात में तो मैं जाके कहता हूं मालना मालूम तुम्हारे यहां कैसे कांजी स्वामी पैदा हो गए, समझ में नहीं आता, ये व्यापारी कौन जो जैन धर्म को पढ़नी पढ़ाना नहीं चाहती, पैसे पैसा जैसे दिखती है, तुम्हारे गुरुदेव कांजी स्वामी का तत्व ज्ञान को स्वस्थ रखने के लिए हमने महाविद्यालय खोला और तुम्हारे यहां के विद्यार्थी नहीं आते, क्या क्या कौन रखेगा जो सुरक्षित, बोलिए। आज कांजी स्वामी जिंदा हैं, इसलिए जिंदा हैं कि तुमने बड़ी बड़ी बिल्डिंग और मंदिर बना दिए, इसलिए जिंदा हैं कि हम गांव गांव में जाकर उनका संदेश सुनाते हैं, बोलो, और 500 आदमी के दिमाग में हमने उत्कीर्ण करा दिया है। भैया ये काम बहुत कठिन है, वो काम तो कारीगरों से हो जाता है, कौन सिंगमरमर के पासियों पर खुदवाने का काम, तो ये काम हमें खुद करना पड़ता है, कितना कठिन काम है, एक एक आदमी के दिमाग में वो आदमी, देखो पहले के जमाने में फोटो बनते थे ना हमारे बाप दादों की, तो ऐसे तो नहीं फटाफट खींच लिए, जिनके मिलते हैं तो वो उनके कोई चित्रकार होते थे, वो बनाते थे और वो जब बनाते थे तो जिसका फोटो बनाना है उसको सिटिंग लेनी पड़ती थी, समझ आई ना, तो ऐसा फोटो बनाना तो वो ऐसा पैसा था घंटे बनता है और चित्रकार देख देख के बनाता था। आपके बाप दादों के फोटो घर में लगे हैं वो ऐसे बने हैं और एक एक फोटो हजारों ने उस वक्त के हजारों ने माने आज के लाखों करोड़ों का था, समझ में आई ना, जब उसको ऐसे बैठना बनेगा तो ये 5 साल तक ये दिमाग हम पे छोड़े, ऐसे नई उम्र के छोकरे कहां मिलते हैं, तुम देते हो, तुम्हें तो अपने बेटों को करोड़पति बनाना है, पैसे वाला बनाना है, तो भले खासा सका के अमेरिका भेजना है, क्यों भले गौरव से कहते हैं हमारे जमाई अमेरिका में है, हमारे बेटे अमेरिका में है, हमारी बेटी अमेरिका में है, क्यों जैसे सिद्ध सलाह में हो
ऐसे ऐतिहासिक युग में क्यों इन नई उम्र के लड़के 12-14-15 वर्ष के अपनी जो असला क्रीम तय क्यों ये टीवी का जमाना इतना अरे हमारे लिए हम कहें तो ऐसे चुपचाप बैठे रहे और हमारे लिखे हम लिखे तो दो जना आंखें फाड़ फाड़ के देख कर बैठे रहे और तब हम 5 साल तक उनके दिमाग में लिख सकते हैं। कितना कठिन काम है, कच्चा माल मिलना बहुत कठिन, कच्चा माल मिल जाए तो लिखने वाले बहुत दुर्लभ। और फिर अरे सुनो मेरी पूरी बात कहना तो शांति साहब कोई मत बोलना बीच में, तुमने कहा था कोई बात कह देना। सेठिया हमारे शत्रु, घबराना नहीं। मैं एक सही घटना सुनाऊं, नाम नहीं बताऊंगा, आप जरा खतरा है नाम बताने में, पहले तो मैंने कई जगह बताया है। एक सेठ जी मेरे पास आए कि साहब मैं यहां पर बहुत बड़ा शोरूम बना रहा हूं विमल का, तो आपके सब विद्यार्थियों को काम, 8-10 विद्यार्थियों को काम में दे दूंगा, क्या अच्छी तनख्वाह में। मैंने कहा सेठ जी यदि तुमने ये काम किया तो नंबर 1 शत्रुओं में तुम्हारा नाम सबसे पहले रहेगा मेरे से। क्यों ये 5-5 साल पढ़ा के हमने धर्म जैन तत्व ज्ञान सिखाया, इन्हें एक ईमानदार आदमी तैयार किया, क्यों इस सारे माल को तुम जनता को लूटने में चोरी करने में चबोटी करने में लगा दोगे। हमारे शत्रुओं के मित्र हैं हम तो काम में, अरे हमें काम नहीं, हमें काम लगाना है, तुम मुझे तनख्वाह वहां दोगे वो तनख्वाह इन्हें दो और जिसे कहो कि बेटा गांव गांव में जाके बच्चों को पढ़ाओ धर्म तो हम तुम्हारे हमारे मित्र हो। हमें काम नहीं, हमने लोगों को काम दिलाने के लिए बच्चे को मर जाए तुम काम दे दो, इसके लिए हमने विद्वान नहीं बनाए हैं। दीन कुमार जी सच्ची घटना है ये, ऐसा पंडित दुनिया में दूसरा नहीं मिलेगा। ये करोड़पतियों की इज्जत, इनके सामने तो भैया हाथी जोड़ते फिरते हैं जैसा बताने। फिर क्या हुआ मतलब वो बेचारे जो विद्वान हम बना है फिर भी अपना जीवन इसी के लिए समर्पित करें देवेंद्र तो वो जिनवाणी सुरक्षित रहेगी। फिर वे धंधे पानी में लग गए, क्यों पत्थरों में माथा मारने लग गए तो क्या होगा, इन्हें कहा परमात्म की दुकान तो समझ जाएगी लेकिन हुकुमतन की दुकान कौन समझ आएगा। यानी वो उसमें जीवन लगा है, सिर्फ 5 साल का सवाल नहीं है, बोलो कौन अपने बच्चे को सारा जीवन इसमें लगाने के लिए समर्पित करने को तैयार है। जैसा वो खाएगा क्या, अरे भाई बड़ा भूखा नहीं रहेगा चिंता मत करो, है क्यों राजमहल नहीं बनेंगे तो भूखा भी नहीं रहेगा, और भूखा नहीं रहे इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, हम क्या करें, हम दो काम कौन करें, एक काम करें कुतोरने का वो करें क्यों। तुम करोड़ों के अरबों के ताजमहल तो खड़े करने को तैयार रहते हो जगह जगह, क्योंकि उसमें तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। जो ये जो छाती है जो जैन धर्म बचेगा, जो कुंद कुंद की वाणी बचेगी, महावीर की वाणी बचेगी, स्वामी जी की वाणी बचेगी, जो इससे बचेगी उनसे नहीं बचेगी। क्यों तो ये वो विद्वान जो 5 साल में तैयार हुआ है। मैं एक सही घटना और बताता हूं, बिल्कुल नाम अभी भी नहीं बताऊंगा, मैं 2-4 साल पहले तो बताता रहा हूं लेकिन अब जरा डरने लगा हूं। क्या क्या साहब हम तो आप जैसे विद्वान तैयार करना चाहिए थे, 5 साल में जितने विद्वान निकला कोई भी नहीं निकला जो ऐसा कर ले बना, कोई ये किताब लिख सकता ना, कोई ये कर सकता ना, ये हमें ये पढ़ा सकता। अरे भैया ये पंडित हुकुमचंद जैसा तुम्हें विद्वान चाहिए ना, तो पंडित हुकुमचंद ने 5 साल पढ़ करके नहीं बना, 5 साल के प्लस 50 साल निरंतर उसमें स्वाध्याय में उसमें रहा है तब का आज का हुकुमचंद मिला है। इन्हें 50 साल और आम लोग बन जाएगा, आज कैसे चाहते थे आज लिखने लग जाए, तुम्हें सांस लिखने वाला चाहिए कि सांस लिखने वाला ऐसा विद्वान चाहिए क्यों, और वो एक आध बन जाएगा तो तुम्ही लोगों में से लोग कहेंगे लिखने की क्या जरूरत है, पढ़ाना तो बहुत है, کیا کرے ان مورکھوں سے جگت میں رہ کر کے. بولو بھارتی میں ایسے تھوڑی تیار ہو جائیں گے. کتنا کٹھن کام ہے. جب ایسا ودوان کوئی تیار ہو جاتا ہے نا تو بس پچاس لوگ بیماریاں جھیل لیتی ہیں, ہارڈ اٹیک, اس سے چلنے کی تیاری ہو جاتی ہے. کرے کیا, ہم نے اتنی محنت کر کے تیار کی اور مال ختم, اب دوبارہ فیکٹری چالو نہیں رکھتے تو ختم ہو جائے کام کرنے کا. تو نرنتر محنت کرنے کی پرکریا کا کام ہے. تب اس میں سے ٹورنامنٹ نکلیں گے, اس میں سے جیتن تھاوڑا نکلیں گے, اس میں سے لوگ نکلیں گے. کیوں, یہ دیسنا لفظی ہے, اس کا نام ہے ویوہار نئے. یعنی ویوہار نئے کو چھوڑ دو گے بیٹا تو تیرتھ کا لوپ ہو جائے گا. یہ کوئی تمہیں سمے سار کا بھاو سمجھانے والا نہیں رہے گا. کیا کیا ہو گیا میں آپ سے پوچھتا ہوں. پہلے کا سمے سار تھا, ایک دوسرا بن گیا. دس لاکھ لوگ, دس ہزار لوگوں کے گھر گھر میں پہنچ گیا. کیا ہو گیا سماج کے دس لاکھ روپے. ارے تیرے کھانے میں پینے میں ایک شادی میں تھوکنے میں کتنے کتنے خرچ ہوتے, کروڑ کروڑ دو دو کروڑ کی ساریاں کرتے ہو. ایک ایک دن میں پنڈال بنانے کے دس دس لاکھ دیتے ہو اور تو نے دیے ہیں کیا. تو مت دینا اپنے گھر میں رکھنا, یہ تو ان جن دس ہزار لوگوں نے دیے ہیں. کیوں ان کے پاس پہنچا ہے, کس کے پاس پہنچا ہے بولیے. کیا تکلیف, کیا ہو گیا. اور کہیں کوئی بربادی نہیں دکھتی ہے, بس تیرے کو جنوانی چھپنے میں ہی بربادی دکھتی ہے. جنوانی لکھنا ہی ایسا کام ہے کہ جس کے لیے روکنے کے لیے کوئی مہاسنگ بنانے کی ضرورت پڑے. کیونکہ ایک آدمی کے روکنے سے روکتا نہیں ہے. کیوں, یہ ہے اصلی جین دھرم. اس کی ایک ہزار ہوں, کیوں ہزار سمے سار کی ٹیکائیں ہوں تو بھی کم ہیں. ہر آدمی لکھے, میں تو کہتا ہوں میرے 500 ودیارتھی لکھے تو میں یہ نہیں مانوں گا کہ میری کتاب کو کون پڑھے گا. دیکھو یہ لکھا ہے اس نے, میں نے میری بال بوئے پڑھوانا میری ہے نا, تو میں نے اس کا اپنن کیا نا, مجھے خوشی ہے نا. میں نے نہیں کہا بیٹا بال بوئے پڑھوانا تھی, کیوں تم نے بنائی. کلپنا بہن نے لکھا میری بال بوئے پڑھوانا ہوتے, میں نے کب کہا. امریکہ والے پارس مل جی نے لکھا یہ بیٹھے انگریزی میں. بولو کبھی روکا کہ تم نے میرا کام کیسا کیوں کیا. بولو کیوں, ابھے کمار جی نے پرشکشن نردیش کا لکھی چرم بدھ پر آئے گی. تو میں نے کہا چرم بدھ پر یہ کتاب اتنی بڑھیا ہے, کائے کو لکھی. کیوں پہلے کی پوجنے خراب تھی, اگل جی نے پوجن کائے کو لکھی. اگل جی کی خراب تھی تو پنڈت حکم چند نے کیوں لکھی. کیوں کیا ہے یہ, اس کی نرنتر یہ تو جتنا کرے اتنا کم. ایک بات پوچھی جین صاحب ناراض سنے, دلی میں بمبئی میں کہ شیئر بازار کا کام کرنے والے کم لوگ ہیں, تم نے کہا کہ کھلا ٹھنڈا. بولو سب سے کہہ رہا ہوں میں نے, اکیلے پنڈتوں کا ہی سب چلے گا. اس سے بھی بتائیں گے کہ پنڈتوں کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. ارے ہزاروں برس میں ایک آدمی ایسا ہوتا ہے پیدا کہ جو کچھ لکھ سکتا ہے, جو کچھ پڑھ سکتا ہے, جو کچھ پڑھا سکتا ہے, اس کے لیے تمہیں اپنے کو گورو کو اندر سے نہیں آتا ہے اور تو کیسے روکا جائے, اس کے لیے تمہارے پرشن کر کے چلتے ہیں تمہیں. میں نے بولا نا کہ 60-70 برس کی عمر میں جب وہ پریپک ہو کے اصلی ودوان بنتا ہے تب تک چلنا چل کی تیاری ہو جاتی ہے. جتنی دفعہ میرے وہ ہارٹ کا پرابلم ہوئی اتنی دفعہ لڈو بٹے ہیں اس دیش میں. سب سے پہلے اسی ادے پور میں ہوئی تھی, مجھے اٹیک ہوا تھا. جس دن لگا تھا نا کون سے میں کہا وہ کون سا ہے مہیلا منڈل میں, تو میں اسپتال میں جانا پڑا تھا. کل میں آئی نا تو وہ ہمارے ادھر ایریا میں للت پور طرف لڈو بٹ گئے تھے. اب ختم ہو گیا تو کام ختم نہیں ہوا. بس کئی دفعہ میں نہیں بولتا ہوں, کئی دفعہ بٹ گئے. لیکن سب تو ان لوگوں نے باندھے تھے جو کانی سوامی کی بات کو پسند نہیں کرتے تھے. اور اب تو بے لوگ بانٹ میں تیار ہیں. کیا کریں کیا کریں. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ بہت کٹھن کام ہے یہ کہ جنمانی رہے, لکھت روپ سے سرکشت رہے, اور اس کے ارتھ جاننے والے رہیں, انہیں سمجھانے والے رہیں, انہیں پڑھنے والے رہیں, انہیں پڑھانے والے رہیں. ایک تو موکش مارگ پکا سکتے آدھے ادھیائے کی شروع کی چار پنکتیاں پڑھ لینا. اب لوگ لگتا ہے کہ دیکھو یہ پنڈت کیا بولتا ہے, لیکن میں تو اپنے ہرد کا دکھ آپ کے سامنے پرکٹ کرتا ہوں. کیا لکھا ہے معلوم اس میں؟ وہ جنم کیا لکھا ہے؟ یہ تو نیتا بن گیا, یہ تھوڑی تو پیسے. اس میں اے لکھا ہے, سنو, اس میں اے لکھا ہے کہ یہ جو جنمانی کو پڑھنا پڑھانا لکھنا لکھانا, یہ وہ کام ہے جو بھگوان مہاویر نے سموسن میں بیٹھ کے کیا تھا, جو گوتم سوامی نے کیا تھا, جو کنڈ کنڈا جی آچاریہ نے کیا تھا. اس لیے تم اس کام کو بیٹا چھوٹا کام مت سمجھنا. کیا ہم تو ان کی دکان پہ لاتے ہیں. لکھا نا آٹھویں ادھیائے کے شروع کی پنکتیاں انہوں نے لکھا ہے. بخشی جی آپ نے تو موکش مارگ کا 15 بار پڑھا ہے نا, لکھا ہے کہ نہیں؟ یہ وہ کام ہے. اس لیے دنیا کوئی کچھ کہے, کوئی کچھ کرے, بیٹا تم یہ کام کرتے رہنا, کرتے رہنا اور کرتے رہنا. کیوں کہ جنمانی کی نرنترتا بنائے رکھنا اس کا نام ہے تیرتھ کا سنچالن. اس کو سمنت بھدراچاری نے لکھا ہے کہ ہے بھگوان مہاویر ایک تمہارا سرودے تیرتھ ہے. یہ سرودے سرد سمنت بھدر کا ہے, 1900 برس پہلے لکھا ہوا, اور اس کو سرودے تیرتھ نام دیا ان نے. تو میں نے جو کتاب لکھی بھکتی سے کہ بھگوان مہاویر اور ان کا سرودے تیرتھ, اس کی وہیں سے لیا ہے نام. دیکھو یہ لائے نکال کے پڑھ کے سناتا ہوں. دیکھا اب متھا دشٹی جیووں کو, اب یہ متھا دشٹی کی بات آ گئی, یہ بھی بتانی ہے مجھے. متھا دشٹی جیووں کو موکش مارگ کا اپدیش دے کر ان کا اپکار کرنا یہی اتم اپکار ہے. تیرتھنکر گندھرادک بھی ایسا ہی اپکار کرتے ہیں, اس لیے اس شاستر میں انہیں کے اپدیشانوسار اپدیش دیتے ہیں. یہ تیرتھنکر گندھرادک کا کام ہے. کسی کو نوکری لگا دینا اپکار ہوگا, لیکن ایسا اپکار نہیں ہے. کیوں پرہم جی, بہت مارمک بات کہتا ہوں. میرے سے لوگ آ کر کے پوچھتے ہیں پنڈت جی آپ یہ پنڈت بنا رہے ہو, یہ بات تو ٹھیک ہے, بڑھیا ہے, آپ محنت بہت کر رہے ہو, لیکن ان کا کیا فیوچر کیا ہے؟ واٹ از دا فیوچر؟ کیا بتائیں, کیا دینا چاہتے ہو؟ ارے یہ انجینئر بنے, ڈاکٹر بنے, یہ بنے, تو ان کا پھر فیوچر کتنا برائٹ فیوچر ہے. کیوں کیا ہے برائٹ فیوچر بتا بھیا تم؟ کہ یہ پڑھ کے نہیں نکلے اس کے پہلے ان کے پاس امریکہ کے لوگ آ کر کے اپائنٹمنٹ لیٹر دیتے ہیں. سمجھ میں آ گئے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اور کتنے کتنے بڑے آفر دیتے ہیں, کیا کروڑوں کے. یہ فیوچر ہے, اور تمہارے پنڈتوں کا کیا فیوچر ہے؟ کیوں میں نے کہا بہت بڑھیا فیوچر ہے کہ جس میں غلامی کی گارنٹی ہو وہ تمہارا برائٹ فیوچر ہے. نوکری دیتے ہیں نا, مالکی تو نہیں دیتے ہیں. کیوں یہ کیا دیتے ہیں؟ نوکری دیتے ہیں کہ مالکی دیتے ہیں کہ وہ, اور کہ ہمارے ودیارتھیوں کا کیا فیوچر ہے؟ کہ یہ موکش میں جائیں گے. بولو ہے ان کا فیوچر؟ ہو یہ فیوچر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ جین دھرم کا کے لیے ہے, یہ موکش میں جانے کے لیے ہے کہ امریکہ جانے کے لیے ہے؟ کیوں رائٹ فیوچر کس کا؟ کہ نہیں نہیں صاحب وہ تو بات ٹھیک ہے, لیکن عزت کی سوال عزت کا بھی تو ہے. کیا عزت کی یاد کرتے ہو تم؟ تم کو بیٹا یہاں بیٹھنے کے لیے 5 منٹ بیٹھنا ہو تو 25 لاکھ بولنا پڑیں گے, اور ہم یہاں گھنٹوں مفت میں بیٹھے رہتے ہیں. इज्जत ही किनको इज्जत ज्यादा मिलेगी बोलिए, इज्जत किनको ज्यादा मिलती है कि जिस स्टेज के लिए 5-5 लाख 25-25 लाख 50-50 लाख की बोलियां बोल के इंद्र बनते हो 5 दिन के लिए, क्या कार्टून बनते हो इंद्र बनते हो? और वो इंद्र हम बनाते हैं, आई एम किंग मेकर, आई एम इंद्र मेकर, क्यों क्या फ्यूचर की बात तुम करते हो? तुम ये 60-70 वर्ष के फ्यूचर की बात करते हो? अरे अपना फ्यूचर तो अनंत काल है ना, अनादि काल से लेकर जिसका ना आरंभ हुआ है और न जिसका अंत हुआ है, ऐसा आत्मा है ना, उसके फ्यूचर की बात करवाना तुम? ये तुम्हारे 60-70 वर्ष की उम्र होती है, क्यों तो उसे 60 वर्ष तक 62 वर्ष में तो रिटायर हो जाते हैं ना, क्यों? तो अभी इतने न्याय, अब ये 60 वर्ष की जिंदगी के लिए 30 वर्ष तक पढ़ाई कर, कितना महंगा सौदा है, और इतना खर्चा करो, डॉक्टरी में भर्ती करने जाओ तो 10-20 लाख तो डोनेशन के नाम पे घूस दो, क्यों? कि वो जितना पैसा खर्चा हुआ है उसका ब्याज घर में बैठे उतनी कमाई नहीं होती फिर उसको, आधी आधी जिंदगी उसमें गई, क्यों? और आधी फिर कैसे गई? खत्म, ये फ्यूचर है, इतना क्या ब्राइट फ्यूचर है, समझ गए ना? इस भ्रम में भी तत्व ज्ञान से अनंत सुख और शांति मिले, सबसे ज्यादा इज्जत मिले, और अगले भ्रम में परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति हो, कितना ब्राइट फ्यूचर है। अब क्या बताएं फ्यूचर किसे कहते हैं तुम? तुम्हें फ्यूचर का पता है? वो भी ये भी सुनवाना चाहता है, क्यों बस जी सुना दूं? चलो कहते जी कहते जे भी कहते सुना दो। कैसा क्या है कि हमारा बेटा यूरोलॉजिस्ट है, जिनका क्या होता ही है यूरोलॉजिस्ट कि तुम जी आदमी समझते हो? वो पेशाब की बीमारियां होती है ना, जो उसका डॉक्टर है लैन लगती है लैन, जिनका उसका अर्थ समझते हो कि जिस दो सरकारी जो ज्ञान है ना अपनी संपत्ति क्या है सर्वोत्तम ज्ञान, जिसको एक समय को आत्मा जिसका ज्ञान का ध्येय बने तो सम्मा दर्शन हो जाए, अंतर मुहूर्त बने तो केवल ज्ञान हो जाए, ऐसा उसका ज्ञान का सर्वोत्तम 24 घंटे दूसरों के उन गंदे अंगों को देखने में जाता है जिनका नाम लेने में शर्म आती है, देवी सरे गले अच्छे कौन दिखाएगा? फ्यूचर देख लो तो हमारा बेटा तो वो है क्या, तो जांच करता है ना कहे कि खून की पेशाब की टट्टी की पेशाब क्या बोलते उसको, मैं जानता नहीं सबका नाम है, पैथोलॉजिस्ट है, नहीं क्या होता भैया पैथोलॉजिस्ट, तो वो पेशाब तो 24 घंटा उसके ज्ञान का देख लेते जिसको देख के हम मौत फेर लेते हैं, क्या फ्यूचर है? नहीं मेरा बेटा तो इंजीनियर है, इंजीनियर माने सारी जिंदगी का वनवास, इतना बड़ा इंजीनियर सारे बांध वही बनाता है, बांध जंगल में बनते हैं ना नगर नगर में, तो जंगल में जाकर के वहां रोकना उसके रहना पड़ता है, क्यों वो रहेगा तो एक बांध बनता है जहां वहां बहुत बड़ा नगर बच जाता है, बच जाता ना, लेकिन इंजीनियर साहब को फिर वहां से भाग के फिर दूसरे जंगल में जाना पड़ता, वो उस नगर में रह नहीं सकते, इसको तुम फ्यूचर कहते हो, इसको तुम भविष्य कहते हो, ये जो तत्व ज्ञान है ये भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि है, आज तक वो हमारे पास तक आई है। क्यों आई है हमारे पास तक? क्योंकि बीच में हमारी 125 पीढ़ियां हो गई हैं। 125 पीढ़ी कैसे हो गई? 25 वर्ष में एक पीढ़ी बदल जाती है। जब कोई आदमी 100 वर्ष का होता है तो 5 पीढ़ियां देख लेता है कि नहीं देख लेता? 80 वर्ष का होता है तो 4 देख लेता है, 60 वाला 3 देख लेता है कि नहीं? तो 2500 वर्ष में कितनी पीढ़ियां हुई? 125 पीढ़ियां हो गई। एक पीढ़ी ने एक गलती नहीं की। यदि एक पीढ़ी भी गलती करती तो आज हमें यह समय साल प्राप्त नहीं होता है ना। और जिनकी पीढ़ियों में एक गलती एक पीढ़ी ने की तो उसका दंड अकेले उस पीढ़ी को नहीं मिला, उसके भविष्य की सारी पीढ़ियां इससे वंचित हो गई। समझ में आएगा ना आपका? जब कुंद कुंद के जमाने में जब दिगंबर श्वेताम्बर अलग अलग हुए होंगे तो एक पीढ़ी ने निर्णय ले लिया कि मुझे सीतांबरों में जाना, उनके सब बेटे बेटे सीतांबर होते आए ना जी ने सारी जिंदगी। फिर अजैन भी हो गए कि नहीं हो गए? फिर उनकी पीढ़ियां की पीढ़ियां गई कि नहीं गई? मैं आपसे पूछता हूं, हम आज वो गलती करने जा रहे हैं जो गलती 125 पीढ़ी में आज तक नहीं हुई। और हमने ये गलती की अपनी आगामी पीढ़ी में ये संस्कार नहीं डाले, ये तत्व ज्ञान नहीं दिया है, ध्यान सुनना, तो उसकी सजा एक पीढ़ी को नहीं भोगना पड़ेगी, आगामी सारी पीढ़ियों को भोगना पड़ेगी। कितना बड़ा अपराध करने हम जा रहे हैं कि ये जो तत्व ज्ञान है जो हमें आज तक हमें प्राप्त है, आज ये समय सार कुंद कुंदाचार्य की वाणी, उसे हम अपनी आगामी पीढ़ियों में नहीं बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? हम तो महाविद्यालय खोलेंगे और विद्यार्थी विद्वान तुम बनाओगे, बन जाएंगे। भैया हम तुम्हारी पीढ़ी की बात कर रहे हैं, जैन साहब हम तो बना देंगे, जैन धर्म तो सुरक्षित रह जाएगा, जैन धर्म भी नहीं करे, तुम्हारे घर की बात कर रहे हैं। यदि तुम्हारे बच्चों में नहीं आया तो क्या होगा बोलो? जी आप चिंता मत करो, ये जैन धर्म तो सुरक्षित रहेगा और आप जितना कहो जितने विद्यार्थी पढ़ाओ हम तैयार हैं पैसा देने को। अरे हमें ना जैन धर्म की चिंता है ना हमारी चिंता है, हमें तो तुम्हारी चिंता है। जैसे बड़े बड़े नेता बैठ गए इनको सारा समाज की चिंता, ओ ऐसा करो ये ना हो जाए, ये ना चले जाए, ये ना चले जाए। अपने बेटे को तो देख संदेश शिखर बचा लेगा, लेकिन बेटा संदेश शिखर नहीं जाएगा तो क्या करेगा? क्यों एक आध दफे संदेश शिखर की यात्रा बेटों को भी करा दो, मैं 1000 आदमी की यात्रा ले जाऊंगा और बच्चे बेटा धंधे में बैठे उनको तो समय नहीं है अभी, क्यों क्या करना? बोलो सुधारमल जी, कितने लोग हैं जो हर कीमत पर आगामी पीढ़ी में जो तत्व ज्ञान उसे प्राप्त हुआ है वो तत्व ज्ञान अपनी आगामी पीढ़ी में देने को तैयार है? मेरे पास बहुत लोग आते हैं पर वो कहते पंडित जी हमारे घर में जो दादाजी थे ना उनके पास बहुत शास्त्र थे, अलमारियां थी अलमारियां भरी पड़ी रही, अब वे तो मर गए उन्हें कोई खोलने वाला नहीं। तुम क्यों नहीं खोलता रहे हैं साहब हम क्या करें? तो हमसे क्या चाहते हो आप बताओ, वे हम कहां भेज दें? क्यों? तो मैंने कहा ठीक है हम बता देते हैं कि वे हमारे यहां भेज दो और साथ में वे अलवारियां भी भेज दो और उन्हें रखने के लिए वो कमरा भी बनाना। नहीं वो बाप का कमरा तो चलता है, उसे बाप की अलवारी उसे चाहिए, तो सांस निकाल के हमारे घर में से निकाल हमें देना है। क्यों? क्यों बाप के लिए रुपया पैसा गहना गले में सोने की चेन पहनते थे वो सब तकता है, अकेले एक जिनवाणी कोई घर से निकाला देना है। बोलिए क्या है? बड़े बहनों ने एक कोने में जिन बाप ने तुम्हें सारी संपत्ति दी और एक कमरा उसके जो प्रिय शास्त्र थे जो जिंदगी में रोजीना पड़ता था वे पड़े रहने दो, कभी तुम्हारे काम आएंगे ऐसा है हमारे। नहीं बेटा एक दिन ऐसा आएगा जब डॉक्टर बेड रेस्ट बताएगा ना तब तो यही काम आएंगे। क्यों निकालना? ये जिनवाणी माता को अपने घर में से निकालना चाहता है तू? अपने बच्चों को सिखाना नहीं चाहता, जिनमानी अपने घर में रह ना जाए, खेल नहीं ना, और मंदिर बनाता जाएगा, दुनिया को सिखाता जाएगा, क्या है? दुनिया जिसको जो तुम अपनी अच्छी चीज समझता है वो तो अपनी संतान को सारी दुनिया देती है। तो अपने यहां एक उदाहरण आता है ना कि एक चक्रवर्ती हुए थे, उनकी वैराग्य भावना हिंदुस्तान के भरत क्षेत्र के कवियों ने लिखी है ना, तुम भी समझ सोई समझ हमें भी हमें इंद्र पद क्यों दिया, आता बड़ी आपने कहनी पड़ी भी बैठो बज्रे दंते राय आप ही सभा लगाए, क्या वैराग्य भावना है ना, बज्रदंत चक्रवर्ती अपनी सभा लगा के बैठा था तो बज्रदंत चक्रवर्ती की वैराग्य भावना हिंदुस्तान के भरत क्षेत्र के कवि ने लिखी, मुझे बहुत बुरा लगा। इतना भी इसको अपना देश प्रेम नहीं है, हिंदुस्तान में चक्रवर्तियों की कमी थी, उनकी कमी लिख दी तो विदेशी की, वो विदेशी, अरे विदेशी में विदेशी ऐसा क्यों था, उनकी कमी लिखी, वो भी धात के खंडद्वीप का, अरे गुजराती गुजराती का ध्यान रखते हैं, हिंदी वाले हिंदी का ध्यान रखते हैं, क्यों राजस्थान मेवाड़ी मेवाड़ी हमारा मेवाड़ हमारा मेवाड़, मेरे जा रहे हो काय का मेवाड़ तुम्हारा, एक एक प्रांत से इतना, वो बेचारा अपने इस देश के इतने तीर्थंकर हो गए, इतने चक्रवर्ती हो गए, उनकी कोई वैराग्य भावना नहीं लिखता है, उस बजरंग चक्रवर्ती की वैराग्य भावना लिखता है, मुझे बहुत बुरा लगा, ये ठीक नहीं है। मानो मैंने उससे पूछा भैया ये क्या किया तुमने, यहां क्या कम थे, तो उसने कहा मुझे बताओ ऐसा कोई जैसा ये था तो मैं यहां वालों का लिख दूंगा, कैसे थे वो, कि जब चक्रवर्ती को वैराग्य हुआ ध्यान से सुनना, वो अपने बेटों को बुलाया उसने कि तेरे को राज तिलक में करता हूं और मैं दीक्षा लेके जाता हूं, कि बेटा पिताजी क्यों, कि इस संसार असार है, भोगों में अनंत मात्र सुख नहीं है, मैंने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है ना, इसको यदि छोड़ के आत्मा का कल्याण करना है तो ये छोड़ना ही अच्छा है, ऐसा मैं निर्णय करके और मैं अब जा रहा हूं। तो सही बात है कि हाँ, तो मैंने वो बेटा कहता है कि पिताजी गजब हो गया, ऐसे बाप हमने आज तक नहीं देखे, ये जो सबसे गंदी चीज है बहुत खराब चीज है वे अपनी संतान को देके जाए, तो मेरी समझ सोई समझ हमेरी हमें नृपपद क्यों दिया, हमें नहीं चाहिए, तो जिससे कहे वहिंकार जिससे कहे वहिंकार, सब दीक्षा ले तैयार। आखिर में एक बहू बेटे की बहू के गर्भ था, उस गर्भ पर राज तिलक करके ये जो बेटा होगा उसको राज देके और चले गए सबके सब। अब बोलो है कोई तुम्हारा राव, हम उसकी लिखते हैं ऐसी जोड़ का। एक बात पूछूं आपको, रामचंद्र जी के बारे में तो आप जानते होंगे ना, रामायण देखी होगी ना, पद्म पुराण भी पढ़ा होगा, उनके पिताजी को भी जानते होंगे ना दशरथ जी को। मैं पूछता हूं कि दशरथ जी को राज्य किस उम्र में मिला था, जब उन्हें राज तिलक हुआ था ना तब वे कितने बरस के थे, मानना मत कल बताऊंगा क्यों, क्यों रात खराब करते हो बता देना अभी क्यों, अरे वो छह दिन के थे, छह दिन के जब उनके पिताजी उनको राज तिलक करके दीक्षा लेके चले गए थे, तो कौन संभालेगा कौन संभालेगा कौन संभालेगा, किसको किसको संभालना, किसको संभालना, क्या संभालना, ऐसे वैरागियों की हम वैराग भावना लिखते हैं वो कहते हैं, ख्याल नहीं ना, सारे जगत का कल्याण अपने अपने बल संतान में कौन संस्कार देना चाहता है, कि तत्व ज्ञान जो गुरुदेव श्री से प्राप्त हुआ है वो अपने बेटे को बहू को बेटे के बेटे को बहू के बहू को, वो तो दो साहब हम क्या करें, हमारे सब घर में ये हालत है, ये है वो है वो है, बल्कि जी एक घर में गया मैं ठहरा, भैया आप लोग घबराना नहीं, नहीं तो मुझे ठहराना बंद कर दो, तो उस कमरे में दिगंबर संतों के नहीं दिगंबराओं के चित्र लगे थे, समझ में आई कि नहीं क्या कह रहा हूं, क्या मैं बैठा
और जान बूझ कर ऐसा देखने लगा क्या बराबर में गाय गड़ाकर ऋषि को देखता था तो वो बेचारे पानी पानी तो बोले पत्नी जी ये मेरा कमरा नहीं देख सका सच्ची घटना है लेकिन बेटे का भी क्यों हो यहाँ दिगंबर संतों के चित्र क्यों नहीं भगवान में उनका अपमान हो जाएगा इनका नहीं होता है एक काम नहीं चलेगा मैं बखीर जी आपके घर आऊंगा तो ये नहीं चलेगा बहाना फिर मैं क्या करूं बेटों का है पोतों का है मेरी तो चलती नहीं मैं तो बराबर 15-15 मुख मार कर चला नहीं 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 होगा मैं जानता हूँ आके देखूंगा बंबई में दिखाओगे तो लेकिन मेरा मतलब आप समझिए ना यानी भाई यदि अमृत है तो ये हमें अपनी संतान को क्यों नहीं देना चाहिए इसका नाम है तीर्थ की सुरक्षा इसका नाम है तीर्थ का लोक नहीं हो जाए और यदि तुम निश्चय नहीं को छोड़ दोगे तो त्रिकाली दुर्ग भगवान आत्मा तेरे अनुभव में नहीं आएगा क्योंकि तुझे उसकी खबर ही नहीं है कि क्या है वो निश्चय नए त्रिकाली दुर्ग भगवान आत्मा को बनाता है इसलिए यदि तुम्हें जैन धर्म को जिंदा रखना चाहते हो आत्मा का कल्याण करना चाहते हो तो निश्चय और व्यवहार दोनों को अपनाओ दोनों में से एक को भी मत छोड़ो अब उनके अपनाने की विधि क्या है फिर वो जनमानी से आपको ख्याल में आएगी।